रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर जाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। दो चार व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुर चापुर खा फांक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो एक जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एकाध चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारद होती। कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर दो चार पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या चार छह आलू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इस बीच वह मेरे घर भी आने लगा था क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे नहीं थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। एक दो बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपका कर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर क्यों चला आया, मैंने पुनः प्रश्न किया। वह क्षण भर असमंजस में रहा, मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था और वह न उसके बताने की चीज थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा, मैंने एक दो क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और दो बहनें थी, टाउन में मर गई। वह दांत निपोर कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहां से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिल डुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हंडिया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीबी से कह दूं कि इससे काम न लिया करो, यह रोगी है, फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आज खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता। इन खिलाफ जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर जोर से कह रहा है, मलिकाइन थोड़ा नमक होगा, मिसिर के यहाँ से रोटियां मिल गई हैं, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ सच बताना, तुझे नहाए कितने दिन हो गए? खिचड़ी में खिचड़ी नहाता हूँ ना मलिकाइन जी। वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर से सह पा रहा है। लोग उसे अब हंसी मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझे मजाक करें जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढाढ़स बंधे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवित राम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है, चला जा, नहीं तो जूठ की काली हाँड़ी चलाकर वह मारूंगी की सारी लफंगई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने से ही से खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने दो तीन बार सिर को ऊपर झटका देते हुए किलकारियां लगाई, जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढीचू ढीचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले के छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छिड़कानी कर देता, जिसके उत्तर में उसे आशानुकूल गालियां झिड़कियां सुनने को मिल जाती और तब वह गधे की भांति ढीचू ढीचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी है? सलाम भौजी, सीताराम सीताराम, राम राम जपना पराया माल अपना। इतना कहकर वह दुष्टता पूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो एक दो मिनट के लिए वहां पहुंच जाता, बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना सहक गया कि नीची जात की किसी जवान स्त्री को देखकर चाहे वह जान पहचान की हो या न हो, दूर से हिचकी दे देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता तो लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो। और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे, क्यों बे रजुआ, साला शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते, रजुआ उनकी बातों पर खींची हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर ऊपर की ओर दो तीन बार झटके देता तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीख खाने पर निकलती है चलता बनता। वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत वाणी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की एक दो पंक्तियां गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं बल्कि टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंसे जाता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफार्म का ही चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलने गया, स्टेशन के फाटक से प्लेटफार्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहर नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास को छिटक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया और उत्सुकतावश में तेज चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे, और उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह अकेली और कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हा हू करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते, और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर मुटर पगली को ताकने लगता, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूम कर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है वे साला? चलता बन नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहां से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं हूँ रजुआ, भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहां से आ पहुंचा, संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा, और फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं अब काफी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफार्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाल बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ, हमारी कसम जरा जल्दी उठिए। मैं अनिच्छा पूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही साथ आश्चर्य एवं घृणा के भाव ऐसे उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। एक क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे और गर्मी में रात को लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि देखें वह आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया। कुछ ही देर में वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में उत्सुकता बनी हुई थी, इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको नहीं मालूम, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्करा कर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़कर नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देख कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो वहाँ उसने भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर अपने साथ लेता गया। उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है, रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भर आ रहा था। वरन की बहू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलनी शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति चकना की लकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है, मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छेड़ने पर मेरी बीवी अवश्य हंस देती। मुस्करा कर उसने उत्तर दिया, आजकल वह भगत हो गया है। वरन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने को उसकी दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को वरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उससे बुआ का रिश्ता भी जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वह बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपए तक इकट्ठे हो गए हैं। एक बार उसने वरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है जब तक वरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा वह दाढ़ी न मुड़वाएगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे अब ख्याल आया। शनिचरी अपने जमाने की एक प्रजंड डोमिन थी, ताड़का की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ मार दिया जिससे उसका प्राणांत हो गया, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आई और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचरी देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि वरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वह कहता है शनिचरी बहुत चलती देवी है। अरे, 1 महीने में ही वरन की बहू कोढ़ फूट फूट कर मरेगी। पता नहीं उसका जोड़ टूटा कि नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वह सदा का ही था, सोचा शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वह उसी तरह कर रहा था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी की चमक चमक उठती वह तिरोहित हो गई थी। वह न वह उतना चहकता था न उतना बोलता था, अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई थी और शनिचरी देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते हैं। यूं तो वह लकड़ियां बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू नमक तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के तांगे वालों और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायेदार नीम के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करते हुए छठा मजाक भी करते हैं। रात को वहीं उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था। मैं खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी क्या कह गए हैं? महावीर जी समुन्द्र में कूदते हैं तो ताड़का महारानी क्या कहती हैं? सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात के उत्तर में रजुआ शायद वह भगत कहलाने लगा था। तत्काल जोश से ऐसे बोला जैसे आशंका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंगबली बड़े जबर थे, वह समुन्द्र में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती है। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाते हैं तो बजरंग बली किससे कम है? ये मियाँ एढ़े तो हम तुमसे ड्योढ़े, बजरंग बली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो जाती हैं, तो बजरंगबली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ये रज्जू भगत गांधी महात्मा भी तो जेल से निकल आते हैं, किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गांधी महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गांधी महात्मा सात समुद्र पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लग कर सब टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या हुए 4 वर्ष गुजर चुके थे, उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वह रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई कोई हंसी मजाक में उसको इसी नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती। अक्सर उसकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत वरण डी के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूंक मंत्र जाप का महत्व समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करने, शनिश्चरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई। शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीवी ने चिंतातु स्वर में सूचना दी, अरे जानते नहीं रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बस बम पुलिस की गली में, जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो और किसको होता। जिंदगी है या जिंदा है या मर गया, मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताऊं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया, वही खंडहर में पड़ा हुआ है, कई दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आधा घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई? कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कह हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वहीं रामजी मिश्र के उसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने अपने यहाँ क्यों न बुला लिया? पत्नी को यह आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूंगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं आप, मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं, दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हुई उसको छुएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। पत्नी ने गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर में पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ते चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की दशा देखकर अकर्मण्य दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे। रजुआ, मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध बुध न थी। वह पेड़ के नीचे एक गंदे अंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कई दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां उभर आई थी, पेट तथा आंखें पिचक कर धस गई थी और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह कुछ फूला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया है, लेकिन उसकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था कि क्या किया जाए, कि मालूम नहीं कहां से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और उन्होंने धीरे से अपनी सम्मति भी प्रकट की। ही कांट सर्वायु, यह बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता था कि जाकर घर बैठ रहूं। जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे ही क्या पड़ी है, लेकिन उसे यूं अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था। मैं लगभग 100 रुपए वेतन पाता था, इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था, मेरे पास एक भी पाई नहीं थी। पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है, अचानक मन में विचार कौंधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांस अब भी चल रही थी। अस्पताल के दो मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा न हो पाती। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया। किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया था, मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हांफने लगता। न मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे ही घर आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने थे, फिर वह अपने आप ही इधर उधर आने जाने तथा काम करने लगेगा। वह 4-5 दिन रहा, खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता, कोई न कोई काम करने की कोशिश करता पर उससे होता नहीं था। किसी को घर में बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब कहीं चला गया। वह कहीं गया न था बल्कि मोहल्ले में ही था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर पैर घिसट घिसट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठ अपने शरीर में तेल की मालिश कर रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा हुआ है, उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए, गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहां तक करे, अब साले को खुजली हुई है, जहां जाता है खुजलाने लगता है, कौन उससे काम कराए, फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब अभी 2-3 रोज की बात है, मैंने कहा 1 गगरा पानी ला दो, गया जरूर लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गए बच्चू, पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट पिचक गया, क्या बात है। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखूं या उससे हाल चाल पूछूं। घर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीवी ने ही उसको भगा दिया होगा और इसीलिए वह मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी अचकचा कर मुझे देखने लगी, फिर तिनक कर बोली, क्या करती, रोग को पालती, मेरा बंधु भाई तो नहीं? मैं क्या कहता, रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता, खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ जाता और पंडित थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी 1-2 बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इस तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसके देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नरकंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चढ़ गया था और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके अलग थे, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं भी सो जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि कोई चोर चाहिए है, इसलिए मैंने टपट कर पूछा, कौन है रे, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क बोला, सरकार रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा, मर गया, कब मरा, कहाँ मरा? मैंने साश्चर्य मुंह बनाकर बाकर एक ही सांस उसे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार मर गया, मालिक इस कारण पर उसके गाँव एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा, उसके गांव का क्या पता है? मालिक रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा, लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज को ढीठ हो गई थी। गोपाल जी, वहाँ तो उसका यही नाम है। मैंने पोस्ट कार्ड पर तेजी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया। लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काठ मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़े, और उसको भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें उसका क्या दोष कतई नहीं रहा। मैंने उसकी दशा देखकर कई बार क्रोधवश सोचा कि कमबख्त एक ही मोहल्ले में क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता कि वह किसी का मोहताज न होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की जिसमें वह असफल रहा, क्योंकि वह मरना न चाहता था इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक सरखी उससे चिमटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए थे। सारे मोहल्ले में यह समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो हो आदमी वह ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे थे। मैं बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था कि जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चकमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते जिससे तबीयत असहाय खीज से भर उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शक्ल का नरकंकाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नरकंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ता आ रहा था। यह तो रजुआ ही था, ठठरी मात्र, क्या वह जिंदा है? वह मेरे निकट आ गया, संभवतः मेरी परेशानी भांप कर बोला, सरकार मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरता पूर्वक प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोर दिए, फिर बोला, सरकार वह गुदड़ी बाजार के बचन राम का लड़का है, मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई सरकार की, मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हुजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है, उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब भी कुछ न आया था। उसने समझाया, सरकार यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत चल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक एक और कारण है, इस पर लिख दे सरकार की गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका कोई मतलब कोई न समझे और लोग बात मजाक को समझकर कहीं दूर दूरा न दें। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं तय न कर पाया।